नमस्कार भारत, आज है 12 जून दिन रविवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, यूपी के विधानसभा चुनाव पर नजर।
चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश में सत्तासीन हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो, पार्टी की सरकार हो, उसकी पार्टी काम कर रही है।
राज्यसभा की 27 सीटों पर हुए चुनाव में राजनीतिक दलों का मिला जुला प्रदर्शन, ऊपरी सदन में बिल पास करवाना बीजेपी के लिए अभी भी नहीं आसान। न्यूज मेकर्स में आज होगी मुलाकात फिल्म 3 के अभिनेता अमिताभ बच्चन से।
ये एक एंग्लो बंगाली कैरेक्टर है, उसका नाम है जॉन विश्वास और जितनी मेरी उम्र है 74 वर्ष की उतनी उम्र का है ये।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आज से भाजपा कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू होने जा रही है। शनिवार से इलाहाबाद में भाजपा के बड़े नेता पहुंचने लगे हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति पर जोर दिया जाएगा। इस बैठक के बाद एक बड़ी रैली के आयोजन का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो रहे हैं। कतर में नीदरलैंड्स की एक महिला को पुलिस ने व्यभिचार के शक में हिरासत में रखा है। इस महिला के वकील ने ये जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया कि छुट्टियां मनाने यहां आई इस महिला ने पुलिस को बताया था कि उसके साथ कतर में बलात्कार किया गया है। सोमवार को अदालत में उसे पेश किया जाना है। वकील के मुताबिक 22 साल की इस महिला ने मार्च में एक होटल में एक कमरा लिया था जहाँ शराब पीने की इजाजत थी और शराब पीते ही उसे ये एहसास हुआ कि उसे नशे की कोई दवा दी गई है और उसके बाद सुबह तक क्या हुआ उसे याद नहीं है, लेकिन उसने खुद को एक अज्ञात जगह पर सुबह पाया था। बलात्कार के संदिग्ध शख्स को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अमरीकी राज्य फ्लोरिडा के ऑरलैंडो शहर में एक गायिका को कंसर्ट के बाद गोली मार दी गई, बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि अमरीकी टीवी कार्यक्रम द वॉइस में हिस्सा ले चुकी क्रिस्टीना ग्रीमी पर उस वक्त हमला किया गया जब वो ऑटोग्राफ दे रही थी। हमलावर को क्रिस्टीना के भाई ने पकड़ा, लेकिन गायिका को गोली मारकर हमलावर ने खुद को गोली मार ली है। 22 वर्षीय क्रिस्टीना को एक स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया था जहां उनकी मौत हो गई है। ऑरलैंडो में पुलिस के मुखिया जॉन मीना ने ये बताया।
She was doing like a meet and greet, you're signing autographs and selling merchandise.
वो लोगों से मिल रही थी, गा रही थी और लोगों को ऑटोग्राफ दे रही थी, तभी एक गोरे शख्स ने उसके पास आकर गोलियां चलाई जो कि एक गोली उसे लग गई। उसके भाई मार्कस ने इस शख्स को गिराकर उस पर काबू कर लिया, लेकिन बाद में उस आदमी ने अपनी जान ले ली और जाहिर है कि क्रिस्टीना ग्रीमी की भी अस्पताल में मौत हो गई है। ये थे जॉन मीना के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी की संसद में तुर्की मूल के 11 सांसदों को पुलिस सुरक्षा दी गई है। इन लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की में आर्मेनियाई लोगों की सामूहिक हत्याओं को नरसंहार करार देने वाले एक प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसके बाद उन्हें मारने की धमकियां मिल रही थी। ग्रीन पार्टी के नेता सेम ओजदेमिर ने एक अखबार को बताया कि उन्हें धमकियों भरे ईमेल मिले हैं। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने इन सांसदों को तुर्की नहीं जाने की चेतावनी दी है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने समाचारों में सुना, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। बैठक के बाद एक बड़ी रैली की भी तैयारी है। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही रैली की तैयारियां की गई हैं और कार्यकर्ता से लेकर नेता तक इसमें इसी भावना के साथ जुटे हैं। बीजेपी ने बैठक से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों विजय बहुगुणा और गिरिधर गमांग के साथ 15 नए नाम भी शामिल किए हैं। हालांकि इसमें स्मृति ईरानी का नाम शामिल नहीं है। एक रिपोर्ट के साथ अतुल चंद्रा।
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से इलाहाबाद में शुरू होगी। 2 दिनों की इस बैठक में और जो भी परिचर्चा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों के लिए रणनीति को और मजबूत करने की दिशा में भी बात होगी। कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 15 नाम शामिल किए हैं। दो दिन की बैठक के बाद सोमवार को एक बड़ी रैली भी होगी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का मंसूबा बांध रही है और इसी के लिहाज से आने वाले दिनों की रणनीति तय होगी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि राजनाथ सिंह को प्रदेश चुनाव के लिए चुनाव अभियान का प्रमुख बनाकर पोस्टर बॉय के तौर पर भी पेश किया जा सकता है। इस रैली को परिवर्तन महारैली का नाम दिया गया है। इलाहाबाद में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के बारे में पार्टी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बीबीसी से कहा,
देखिए यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले 2017 में चुनाव है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश में सत्तासीन हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो, पार्टी की सरकार हो, इसलिए पार्टी काम कर रही है।
कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रैली स्थल के आसपास की व्यवस्था संभालेंगे। अनुमान है कि लगभग 2000 स्वयंसेवक मोर्चे पर रहेंगे। रैली स्थल पर व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रदेश के संगठन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को दी गई है। उन्होंने रैली की तैयारी के बारे में बताया,
जो रैली स्थल है उसके 11 टीम होती है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, मंच है, बैरिकेडिंग है, उस सिस्टम एक खतराता है जिसके कारण रैली की संपूर्ण व्यवस्था देखी जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से 500 बच्चे हैं तो वो पूरा एक सिस्टम बनाया गया है वहाँ का रैली स्थल का, और रैली कुल मिलाकर ऐतिहासिक रैली होगी, संपूर्ण तैयारी है।
अच्छा, कुछ इस बात पर भी चर्चा होगी कि मुख्यमंत्री कौन बन सकता है प्रदेश का?
नहीं, यहाँ पर भाई साहब कोई चर्चा नहीं, तो आप तो अच्छी तरह जानते हैं संसदीय बोर्ड की दिल्ली में बैठक होती है और दिल्ली तय होती है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं।
बलिया में हुई रैली के बाद पूर्वांचल को ध्यान में रखकर की जाने वाली ये जनसभा इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र को लेकर कितनी गंभीर है। बस जिस बात को लेकर पार्टी असमंजस की स्थिति में है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए नाम पहले बताया जाए या बाद में।
जानकारी दे रहे थे अतुल चंद्रा। और अब सीधे चलते हैं बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव के पास। नितिन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किन किन खास मुद्दों पर चर्चा हो सकती है?
देखिए, तीन तरह की बातें अमरीश जिनकी स्ट्रेटजी पर भाजपा जरूर बात करेगी। पहली बात तो ये है कि भाजपा को अपने काडर को उत्तर प्रदेश में ये बताने की जरूरत है और वो बताना चाह रहे हैं कि दरअसल ये चुनाव 2017 का उनके लिए वैसे ही है जैसे 2014 का आम चुनाव था। उस वक्त ये था कि अगर यूपी और बिहार में ज्यादा लोकसभा सीटें नहीं आएंगी तो केंद्र में सरकार नहीं बनेगी, और अगर यूपी का चुनाव भाजपा की तरफ से देखिए वो नहीं जीतते हैं तो राज्यसभा से लेकर बहुत सारे कानून है वो सब पड़े के पड़े रह जाएंगे। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस कार्यकारिणी से बेसिकली एक बहुत सिंबॉलिक सा मैसेज देना चाहती है अपने काडर को। अमित शाह की रणनीति ये है कि वो बूथ लेवल तक लोगों को मोबिलाइज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बूथ लेवल तक उनका जो कार्यकर्ता है वो उठे और उनके प्रचार में लगे। तीसरा जो मुझे लगता है जो सिंबॉलिक इस कार्यकारिणी का है वो इलाहाबाद का इस पाठशाला ग्राउंड है जहां पर ये कार्यकारिणी और उसके बाद ये आसपास की सारी गतिविधियां होंगी आजकल में, और उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है आनंद भवन जो जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी का घर था। तो एक सिंबॉलिक मैसेज भी देना चाहती है पार्टी प्रदेश में। लेकिन खास बात यही है कि अमित शाह एक तरफ मायावती के वोट बैंक को खाने की फिराक में है दलित पॉलिटिक्स दलित की राजनीति का कार्ड खेलकर, दूसरी तरफ उन्होंने मथुरा वाले इंसिडेंट के बाद से समाजवादी पार्टी को भी खेलना शुरू कर दिया है, उन्होंने ईमेल लॉन्च कर दिया है। तो इसलिए अब वो ये चाहते हैं कि पार्टी प्रदेश में नंबर एक पार्टी बनकर उभरे, उसी के लिए सब कुछ सारी तैयारी सारी जद्दोजहद उसी की।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। शनिवार को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की 27 सीटों के लिए चुनाव हुए। शाम को आए नतीजों में बीजेपी को 12, कांग्रेस को 6, समाजवादी पार्टी को 7 और बीएसपी को 2 सीटें हासिल हुईं। मुकाबला रोचक रहा हरियाणा और झारखंड में, जहां तकनीकी कारणों से कांग्रेस को नुकसान हुआ और फायदा मिला बीजेपी को। निखिल रंजन की रिपोर्ट।
शनिवार की शाम राज्यसभा की 27 सीटों के लिए हुए 7 राज्यों में चुनाव के नतीजों का ऐलान जैसे ही शुरू हुआ, राजधानियों में ढोल नगाड़ों का शोर और नारों की गूंज सुनाई देने लगी। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें भी थी और वहां सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी के सभी 7 उम्मीदवारों की जीत ने उनका मनोबल बढ़ा दिया। कांग्रेस और बीजेपी को 1-1 जबकि बीएसपी को 2 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी की ओर से अमर सिंह भी मैदान में थे, उन्होंने पार्टी का आभार जताया।
मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी, समाजवादी पार्टी के तमाम नेतृवृंद, विधायकों और कार्यकर्ताओं का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं।
सबसे दिलचस्प मुकाबला रहा झारखंड और हरियाणा में, जहां कांटे की टक्कर होने के बावजूद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को जीत दिला दी। झारखंड में 3 विधायकों को वोट देने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि हरियाणा में कांग्रेस के 14 वोट रद्द कर दिए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि इन दोनों जगहों पर बीजेपी के या बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। हरियाणा में सुभाष चंद्रा और चौधरी वीरेंद्र सिंह जीते, जबकि झारखंड में मुख्तार अब्बास नकवी के साथ ही महेश पोद्दार भी राज्यसभा में पहुंच गए। कांग्रेस प्रवक्ता आरपीएन सिंह ने बीजेपी पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।
मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू थ्रॉटल डेमोक्रेसी इन द एग्जैक्ट सेम मैनर व्हाट दे डिड इन उत्तराखंड, व्हाट दे डिड इन अरुणाचल प्रदेश।
मोदी सरकार लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रही है, जो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में किया, फिर उत्तराखंड में किया, वही आज राज्यसभा के चुनाव में किया।
कांग्रेस के विधायकों को और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने, जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना मत दिया है, उनको धन्यवाद देता हूं। पहले ही मैं कह चुका हूं कि कांग्रेस के अगर किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है, आंकड़े जब हमारे पास पूरे आ जाएंगे, उस पर अवश्य देखकर अवश्य कार्रवाई करने का काम कांग्रेस पार्टी।
राजस्थान की सभी सीटों पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी को हरियाणा, मध्य प्रदेश और झारखंड में 2-2 जबकि कर्नाटक में 1 सीट हासिल हुई है। उधर कांग्रेस को कर्नाटक में 3, मध्य प्रदेश में 1 और उत्तराखंड में 1 सीट हासिल हुई। कांग्रेस की तरफ से जीतने वालों में जयराम रमेश और कपिल सिब्बल भी हैं, जबकि बीजेपी के सभी 4 केंद्रीय मंत्री चुनाव जीत गए हैं। इनमें मुख्तार अब्बास नकवी, वेंकैया नायडू और निर्मला सीतारमन शामिल हैं। वेंकैया नायडू ने राजस्थान से जीत हासिल की है। उन्होंने जीत के बाद कहा,
विशेष रूप में मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा सिंधिया जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो केंद्र ने प्रपोज किया, प्रदेश ने उसको स्वीकार करके हमको यहां से जिताया। आने वाले दिनों में केंद्र में जो भी राजस्थान संबंधित विषय है, उसमें राजस्थान को भला करने के लिए पूरा प्रयास।
चुनाव नतीजों में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर जरूर हुई, लेकिन कोई अकेला विजेता नहीं रहा। उच्च सदन में इन नतीजों का बीजेपी के संख्याबल पर कोई ज्यादा असर तो नहीं होगा। कांग्रेस अभी भी सहयोगी दलों के साथ बहुमत में रहेगी।
राज्यसभा चुनाव के नतीजों का सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए क्या मतलब रहा, ये जानने के लिए निखिल रंजन ने ही बात की वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश से।
नहीं देखिए, ये तो मिक्स है इसमें काफी, और कोई ये नहीं कह सकता है कि उसकी झंडा फहरा दिया है और दूसरे जो उसके प्रति प्रतिस्पर्धी हैं या विपक्षी हैं उनका बिल्कुल ध्वस्त हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जगह जब माना जा रहा था कि कांग्रेस डिमोरलाइज है और वो काफी बुरी हालत होगी, उसके बड़े नेता भी चुनाव हार सकते हैं कई जगह, तो ऐसा नहीं हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश के मामले में पार्टी का काफी बड़ा स्टेक था, खासकर कपिल सिब्बल का चुनाव, लेकिन उन्होंने बहुत आसानी से जीत लिया, इसके बावजूद कि उनको जो बहुत मजबूत पॉलिटिकल पार्टीज हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने वोट ट्रांसफर नहीं किए, लेकिन फिर भी उन्होंने मैनेज किया, क्योंकि अजीत सिंह की जो पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, उसने कांग्रेस को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया था। ठीक इसी तरह कर्नाटक में भी कांग्रेस ने लगभग सीटें निकाली और साथ साथ एडिशनल जो सीट थी, जो कम वोट कुछ पड़ रहे थे, वहां भी उन्होंने मैनेज किया। लेकिन एक बड़ा जो उलटफेर देखने में सामने आया है, जो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, वो है हरियाणा और झारखंड का। तो हरियाणा में जिस तरह कांग्रेस के 14 वोट इनवैलिड हुए हैं, अभी तक जो खबर हम लोगों को मिली है, 14 वोट इनवैलिड होना ये अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही संदिग्ध मामला है, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता का अगर कोई सबब है तो वह हरियाणा है, जहां उसकी पार्टी हाल तक राज करती थी बीजेपी के सत्ता में आने से पहले, लंबे समय तक उसका राज रहा, उसकी पार्टी अभी भी वहां एक महत्वपूर्ण पार्टी है, उसके 17 के आसपास विधायक हैं, और वहां 14 वोट इनवैलिड हो गए। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड ढंग से ये कोई उलटफेर हुआ है या कोई मिलीभगत है अपनी ही पार्टी को कमजोर करने का, जो मैं समझ पा रहा हूं। और झारखंड में बीजेपी ने सरकार में होने का बेहतरीन ढंग से कला कौशल दिखाया, क्योंकि वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में वो था तालमेल, फिर भी जेएमएम नहीं अपने को आगे कर सकी और बीजेपी के समर्थित दूसरे कैंडिडेट जीत गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़े कारपोरेट का घराने से एक कैंडिडेट को पुटअप किया था बीजेपी ने एडिशनल अपने वोट के आधार पर, लेकिन वो चुनाव नहीं जिता सकी पार्टी, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है।
जो राज्यसभा में बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति है और सरकार को जो लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्या लगते हैं कि इन नतीजों से उस पर कोई असर पड़ेगा?
नहीं, अभी तो राज्यसभा का जो शक्ति संतुलन है या संख्या है जो गणित है राज्यसभा का अंदरूनी, उसमें कोई बड़ा उलटफेर या परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये जो कुछ देखने में आएगा मेजर, वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के विधानसभा चुनाव के बाद जब राज्यसभा के भविष्य में चुनाव होंगे यानी 2017 के बाद, तब स्थिति देखी जा सकेगी कि क्या बनता है क्या बिगड़ता है। फिलहाल राज्यसभा में जो 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 केंद्रीय स्तर पर विपक्ष है इस वक्त, वही वहां पर ज्यादा संख्या में मौजूद रहेगा, इसलिए बीजेपी लेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एनडीए की, उसके लिए राज्यसभा परेशानी का सबब बना रहेगा। फिलहाल इन चुनावों का उस पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, जिनका कहना है कि बीजेपी के लिए राज्यसभा अभी भी परेशानी का सबब, जो संख्या बल है उसके आधार पर परेशानी का सबब बनी रहेगी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते से सरकारी एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर हैं। राज्य में प्रतिदिन कई हजार मरीज इन एम्बुलेंसों के सहारे ही अस्पताल पहुंचते हैं। हड़ताल की वजह से कई मरीजों की हालत बिगड़ने के साथ ही कुछ मरीजों की इलाज के अभाव में मौत होने की भी खबर है। राज्य सरकार ने एस्मा भी लगाया है, लेकिन अब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। रायपुर से आलोक पुतल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में 108 संजीवनी और 102 महतारी एक्सप्रेस नामक आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं के लिए हर दिन लगभग 5000 कॉल आते हैं और पिछले 5 सालों में 90 लाख से अधिक लोगों ने इस सेवा का उपयोग किया है। हर दिन 5000 लोगों तक पहुंचने वाली ये एम्बुलेंस सेवाएं पिछले 10 दिनों से बंद पड़ी हुई हैं। इस एम्बुलेंस सेवा में काम करने वाले एक निजी कंपनी के 4000 से अधिक कर्मचारी और टेक्नीशियन कई कर्मचारियों की छटनी के बाद से हड़ताल पर हैं। शनिवार को सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्मा का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में हड़तालियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन हड़ताली कर्मचारी किसी भी हालत में हड़ताल वापस लेने के पक्ष में नहीं हैं।
इस हड़ताल को करने से पहले हमने पूरी प्रशासन को निवेदन किए थे, लेकिन किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला, तो हम सबको मजबूर होना पड़ा इस तरह के कदम उठाने के लिए। इसके लिए मैं प्रदेश भर के जनता से क्षमा चाहता हूँ। इस सेवा को जो हम अभी उनको नहीं दे पा रहे हैं,
स्वास्थ्य मंत्री से 2-3 बार जाके हम लोगों ने मिला है, हमको कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है, तब ये जाके हमको ये निर्णय लेना पड़ा है।
कर्मचारियों की हड़ताल के बाद पिछले 10 दिनों में कम से कम 52 लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी भी अब कर्मचारियों के साथ खड़ी हो गई है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप जुनेजा कहते हैं,
108 और 102 ऐसा मामला है जो इमरजेंसी सेवा है, आवश्यक सेवा है। इसमें सरकार की लापरवाही 8 दिन तक क्यों जाएगी? क्या सरकार इंतजार कर रही थी कोई एक्सीडेंट हो, किसी की मौत हो, तब हम इसको एस्मा लगाए या इसको ये करें?
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और रायपुर के विधायक श्रीचंद सुंदरानी जुनेजा से सहमत नहीं हैं।
छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा सामने आया है कि हड़ताल हुई है। निश्चित रूप से अगर जो जायज मांगे हैं तत्काल पूरी की जानी चाहिए थी, और निश्चित रूप से सारे जांच के विषय है, और सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है, सरकार इसमें कड़ाई से लेगी और कोई न कोई उचित कार्रवाई भी करेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने इन एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन का जिम्मा एक बड़े औद्योगिक घराने जीवीके को दे रखा है। यह दिलचस्प है कि सरकार जीवीके के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन सेवाओं के लिए जिम्मेदार जीवीके कंपनी के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करने से बच रही है। ऐसे में लगता नहीं है कि 108 संजीवनी और 102 महतारी आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाएं जल्दी सड़कों पर फिर से उतर पाएंगी। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। हरिता, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी अमरीश, आज के अखबारों में सबसे बड़ी खबर जो है वो है राज्यसभा चुनाव। इसमें कांग्रेस को लगा झटका हरियाणा में, उस खबर को ज़्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। इसके अलावा संडे पैनियर ने लिखा है कि एनडीए क्लोजर टू अपर हैंड इन अपर हाउस, मतलब कि राज्यसभा में उच्च सदन में एनडीए जो है वो अब बढ़त की ओर बढ़ रही है। कल के जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा को 12 सीटें मिली हैं। और संडे एक्सप्रेस ने लिखा है कि शॉक फॉर कांग इन हरियाणा, हरियाणा में कांग्रेस को झटका और झारखंड में भी कांग्रेस को झटका लगा है। इसके अलावा संडे एक्सप्रेस में एक खबर है, ईमेल एक किताब का जिक्र किया गया है जिसे कि डेनमार्क के एक पत्रकार कैरे सोरेंसन ने लिखा है, और इसे डेविड कोलमैन हेडली की के बारे में ये किताब है कि द माइंड ऑफ अ टेररिस्ट, इनके दिमाग में इनकी मानसिकता क्या है, क्या सोच है, डेविड कोलमैन हेडली, इस पर ये किताब लिखी गई है और इस पर इसका अंग्रेजी अनुवाद, इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है कि 2039 तक वो जेल की सज़ा काट रहे हैं और फिलहाल वो एक मुस्लिम की तरह, कट्टर मुस्लिम की तरह जेल में रहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और अपने आप को दाऊद के नाम पर ही बताते हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
और अब वक्त है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम न्यूज मेकर्स का, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन से, जिनकी फिल्म 3 इसी हफ्ते रिलीज हुई है। अमिताभ ने इस फिल्म में खास किरदार निभाया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है।
इंडियन सिनेमा में बहुत बार ये ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें कैरेक्टर्स कुछ एंग्लो इंडियंस हैं, या पूरी फिल्म ही एंग्लो इंडियंस पर बेस्ड है। फिल्म जूली तो याद होगी आपको।
सारा कॉलोनी में किसी एंग्लो इंडियन का पास गाड़ी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड का पास होगा। लेट अस सेलिब्रेट।
1970s में अमिताभ बच्चन ने भी कुछ ऐसा ही किरदार निभाया था, मैन इन अमर अकबर एंथनी।
इधर आओ, तुम्हारा नाम ही तो एंथनी है ना।
हाँ सर, पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में तो गोंसाल्वेस भी लगे लाया, एंथनी गोंसाल्वेस, ऐसे बोलने का था ना सब।
और इस हफ्ते रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म 3, जिसमें वो एक बार फिर एक एंग्लो इंडियन आदमी का किरदार निभा रहे हैं। साथ में हैं विद्या बालन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी।
कुछ मिला?
पिछले 8 साल से हर दिन आप यही सवाल करते हैं।
और कुछ है नहीं मेरे पास।
इस बार बीबीसी न्यूज मेकर्स में बातचीत अमिताभ बच्चन से, मैं हूँ सुमिरन। अमिताभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस मिस्ट्री फिल्म में आपका क्या कैरेक्टर है, कुछ उसके बारे में बताइए।
ये जो कैरेक्टर है, ये एक एंग्लो बंगाली कैरेक्टर है, उसका नाम है जॉन विश्वास। और जितनी मेरी उम्र है 74 वर्ष की, उतनी उम्र का है ये। और मध्यम वर्ग में है, मिडिल क्लास, थका है, एक रिटायर्ड अफसर है एक ज़माने में, छोटा मोटा जो काम होता है वो दिन भर का वो करके आता है, इस तरह की अपना जीवन व्यतीत करता है। तो उसकी अपनी विचारधारा है अपनी पोती के प्रति। तो कलकत्ता में इसको एंग्लो बंगाली कैरेक्टर रखा, और जो रिसर्च किया इन्होंने, मैं जब कलकत्ते में था तो मेरा संपर्क एंग्लो इंडियन जो वहाँ की जो परिवार है वो काफ़ी भारी संख्या में है कलकत्ते में।
कलकत्ता की क्या खास यादें हैं, क्या खास जगह है आपके मन में, आपकी लाइफ में?
हमारी जो काम की जो शुरुआत हुआ था वो कलकत्ते से हुआ था, पहली नौकरी जो मिली वो वहाँ। हमारे ज़माने में होता था वातावरण घर का, सब लोग बोलते थे कि ग्रेजुएट हो जाओ यार, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर गए, ग्रेजुएट हो गए। किसी ने कहा साहब ऑल इंडिया रेडियो में चले जाइए, वहाँ अनाउंसर, वहाँ भी गए, वहाँ भी ट्राई किया, वहाँ पर भी फेल हो गए। तो किसी ने कहा यार कलकत्ते में ग्रेजुएट्स जो हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटी में उनका पढ़ाई लिखाई हुई हो, उन लोगों को नौकरी मिल जाती है वहाँ, ऐसे वहाँ पर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं ट्रेनिंग। तो हम भी ट्रेन पकड़ के पहुँच गए वहाँ, वहाँ नौकरी मिल गई। तो पहली नौकरी वहाँ कलकत्ते में मिली, फिर 7-8 साल हमने वहीं बिताए। तो वो माहौल जो है वो हमेशा याद रहा। उसके बाद फिर जब छोड़ करके हम इंडस्ट्री आ गए तो कई बार हमको वहाँ काम करने का अवसर मिला। हमने वहाँ याराना की शूटिंग की, दो अनजाने, पीकू, 3। तो जब भी अब वहाँ जाते हैं तो अच्छा लगता है, पुरानी यादें सब आ जाती है।
1969 से लेके 2016 तक आपने फिल्में की हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, ऑडियंस का टेस्ट बदलते हुए देखा है। तो अगर फिल्म मेकर्स की बात करें, ऑडियंस की चॉइस की बात करें, तो आज की जनरेशन की क्या खास बात है?
मैं इस ये जो आजकल की जो पीढ़ी है और आजकल की जो फिल्म परिवार है उनकी बड़ी सराहना करता हूँ, क्योंकि अलग अलग सोच है उनकी, और जनता को बहुत श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि जनता अब निर्धारित कर रही है कि उन्हें किस तरह की अलग किस्म की फिल्में, अच्छी फिल्में, कहानी हो जिसमें। कई बार ऐसा होता था कि वो क्रेडिट टाइटल्स देखने के बाद ही पता चल जाता था कि हाँ मुझे मालूम है अब क्या होने वाला है। और बहुत सारी हमारे सामने भी चुनौतियाँ आ गई हैं, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, इन सब के ऊपर ऐसे ऐसे पदार्थ आने लगे हैं जो कि देश विदेश में जिस दिन बाहर निकले उसी दिन यहाँ भी आ जाते हैं, उसकी जानकारी हमें मिल जाती है, हम देख पाते हैं उसे किस तरह से जनता को अपने ड्राइंग रूम से हटा करके एक सिनेमा घर में लाएं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। विदेशों के साथ भी हमारा एक मुकाबला चल रहा है, विदेशी जो हैं वो भी अब हमारे इस आंगन में आ गए हैं और बहुत प्रबल हो गए हैं।
खैर, आप बातचीत से ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं। एक और तरीका आजकल नया आया है सोशल मीडिया का, जिससे आप लोगों से कनेक्ट करते हैं। आपका क्या कहना है सोशल मीडिया के बारे में?
ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ सबके पास एक आवाज़ है। पहले ये थी नहीं, आपको लोग अपना सोचते होंगे, आपको पता नहीं होता होगा कि क्या सोच रहे हैं। अब कम से कम पता तो चल जाता है। प्रत्येक इंसान में कुछ ना कुछ तो कमियां रहती हैं, और अगर ये वो आपके बारे में कहते हैं कि आपकी ये गलती है, ये गलती है, तो उसको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। हमारे जितने भी हम ब्लॉग पे हैं उसमें हमने रिस्पॉन्स कॉलम बनाया हुआ है, हमको भी पता चलता है कि कैसा हो रहा है। क्रिटिक्स जैसे हैं, आप लोग सब, आप लोग जा करके फिल्म देखेंगे, फिर आप उसके बताएंगे कि साहब ये ठीक नहीं, ये नहीं, ये हम लोग नहीं देख पाते हैं, हमें इतनी क्षमता नहीं है। हम लोग तो फिल्म बनाते हैं, और फिर कई बार जब क्रिटिसिज्म होता है या क्रिटिक्स को पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है, अरे हाँ यार ये तो सही है, इसको तो देखना चाहिए, तो अगली बार हम इसको ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह मैं स्वागत करता हूँ इन सब चीज़ों का। अश्लील शब्द नहीं मुझे अच्छे लगते, वो जब आ जाते तो मैं उनको वापस कहता हूँ भैया अश्लील शब्दों का इस्तेमाल ना करें। फिर अगर वो लगा रहता है तो फिर उसको ब्लॉक करना पड़ता है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता।
तो ये थे अमिताभ बच्चन जो हमें बता रहे थे अपनी फिल्म 3 के बारे में। फिल्म 3 में वो नजर आ रहे हैं विद्या बालन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रिभु दास गुप्ता ने।
भारत ने कल लंदन में चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में ब्रिटेन को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले भारत ने जर्मनी के साथ अपना पहला मुकाबला 3-3 से बराबरी पर खेला था। इंग्लैंड पर भारत की इस जीत के बाद हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने लंदन में ही मौजूद वरिष्ठ खेल पत्रकार वी कृष्ण स्वामी से बात की।
ब्रिटेन ने पहले दोनों क्वार्टर में भारत पे बहुत दबाव बनाए रखा और अटैक किए, मगर 17वें मिनट में पहला गोल वो भारत को मिला जब मनदीप सिंह ने बहुत ही अच्छा गोल दागा और एसवी सुनील राइट विंग से बॉल को लेके गए, उन्होंने वापस मनदीप को पास किया और एडम डिक्सन का जो डिफ्लेक्शन था वो मनदीप की ओर आया और मनदीप ने उसे गोल में डाल दिया। 1-0 की बढ़त प्राप्त हो गई भारत को। तो दूसरे क्वार्टर में उसके बावजूद ब्रिटेन ने भारत के ऊपर अटैक बनाए रखा, मगर भारत के डिफेंस ने उसको बिल्कुल संभाल के गोल को होने नहीं दिया। और तीसरे क्वार्टर की जब शुरुआत में शुरू में ही करीब 4th मिनट में यानी कि 34वें मिनट में मैच के लगातार भारत को 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उसके बाद रघुनाथ की हिट बिल्कुल गोल की तरफ जा रही थी, दूसरी हिट तो वहां पर ब्रिटेन के बैरी मिडल्टन के कंधे पर लगी। उन्होंने हालांकि उसको छुपाने की कोशिश की और बिल्कुल कंधे की तरफ हाथ नहीं रखा, हालांकि उनको काफी चोट और काफी दर्द हो रही थी उसके बाद लगा, मगर भारत के रघुनाथ ने एकदम से जो है अपने कोच रोलैंड ऑल्टमैन की ओर देखा, जिन्होंने सिग्नल किया कि रेफरल मांगने को उन्होंने सजेशन दिया और रघुनाथ ने रेफरल मांगा और थर्ड अंपायर ने भारत को एक पेनल्टी स्ट्रोक दिया। हरमनप्रीत ने उसे बिना किसी गलती किए उसको गोल में बदल दिया और भारत को लीड 2-0 हो गई। मगर एक ही मिनट बाद उसके जो है ब्रिटेन को भी एक पेनल्टी कॉर्नर मिला जिसे एश्ली जैक्सन ने कन्वर्ट किया और 2-1 की स्कोर कर दिया। और उसके बाद लगातार काफी देर 15-20 मिनट 25 मिनट तक ब्रिटेन ने भारत के ऊपर हावी रहे, मगर भारत के डिफेंस ने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया और 2-1 की जीत हासिल की। और मैच के बिल्कुल बाद रोलैंड ऑल्टमैन काफी खुश थे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ जिस प्रकार से इस टीम ने पहले 3-3 के ड्रॉ के बाद जर्मनी के खिलाफ अब इस मैच में बहुत अच्छा बाउंस बैक किया। ब्रिटेन की टीम काफी अच्छी खेल रही थी, मगर भारत के युवा खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया।
ये थे वरिष्ठ खेल पत्रकार वी कृष्ण स्वामी। और कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आज से भाजपा कार्यकारिणी की 2-दिवसीय बैठक शुरू होने जा रही है। फ्रांस के मार्से में यूरो 2016 चैंपियनशिप में इंग्लैंड और रूस के मैच से पहले और बाद में हिंसा हुई है, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। हिंसा में 30 लोग घायल हुए हैं, इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्रिटेन स्थित सीरियाई विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि दमिश्क के पास 2 आत्मघाती हमले हुए हैं। टीवी पर दिखाए गए फुटेज के मुताबिक कई सड़कों पर जलते हुए वाहनों से धुआं निकलता दिख रहा है। बांग्लादेश में ब्लॉगरों और अल्पसंख्यकों की हत्याओं पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार इसके बहाने अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साध रही है। सरकारी अधिकारियों ने इन आरोपों का खंडन किया है। जर्मनी की संसद में तुर्की मूल के 11 सांसदों को पुलिस सुरक्षा दी गई है। इन लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की में आर्मेनियाई लोगों की सामूहिक हत्याओं को नरसंहार करार देने वाले प्रस्ताव को समर्थन दिया था। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।